دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے، وقت کے امام کے حضور اس عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہ، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. زین محترم، سب سے پہلے تو وقت کے امام کے حضور اس عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے اور ان تمام ایام میں ان کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور ان کے وجود کی برکات سے استفادہ کرنے کے لیے، ان کے نظر لطف کے حصول کے لیے، کہ اگر وہ ایک نظر لطف کر دیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی زندگیاں ان کے راستے پر گامزن ہو سکیں، اپنے ان تمام جذبات کے اظہار کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دین مبین اسلام انسانوں کو زندگی کے اندر ایک امید، ایک ہدف عنایت کرتا ہے، اور دین کا اپنا ایک میکانزم ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے. میں بغیر کسی مقدمے کے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چاہوں گا کہ کم سے کم وقت میں ڈیلیور کیے جائیں، کافی انتظار آپ کر چکے ہیں اور ہم بھی. میں چاہوں گا کہ آپ کا وقت کم لگے اور معلومات آپ تک زیادہ پہنچے، جو ایک پروڈکٹیو اور ایفیشنٹ یوز ہو جائے گا ٹائم کا انشاءاللہ. اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کچھ پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی چیز کے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر وقت دے رہا ہوتا ہے، تو اس سے کچھ رزلٹ لینا چاہتا ہے، اور اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو وہ اپنے کام سے حاصل کرنا چاہتا ہے. ان تمام کو دیکھتے ہوئے اور اس معاشرے کے اندر جو دین کی مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، کچھ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شاید تھوڑے سے بے ترتیب لگیں گے، کہ مثلاً آپ سوچنے لگیں گے بھائی اس میں مجلس کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ شاید نہیں ہے، لیکن چونکہ میں سوچتا ہوں کہ اب اگر میں یہ سوچوں کہ ایک مجلس میں ایک ہی پوائنٹ بولوں تو پھر یہاں تو ٹوٹل تین پروگرام ہونے، ایک ہو چکا ہے، ایک آج ہے اور ایک کل ہے، تو پھر پوائنٹس کیسے ڈیلیور کیے جائیں گے. تو میں علیحدہ علیحدہ ان پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ ذرا سا اس کے اوپر دماغ کے اس حصے میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا جو محفوظ رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ 20 منٹ کے بعد تقریباً 80% چیزیں بھول جاتا ہے، 80% دماغ سے نکل جاتا ہے 20 منٹس کے بعد. بہت کم چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جو بالکل اسٹارٹ میں کہی جائیں، جو بالکل اینڈ میں کہی جائیں، معمولاً ایسا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں سمرائز بھی کر کے دے دوں گا. تو کہتے ہیں ہر 20 منٹ پر اگر سمری دیتے رہیں 10 منٹ پر تو وہ افیکٹو رہ جاتا ہے اس میں انسان کے ذہن کے اندر. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. سب سے پہلے اس مسئلے کے اوپر ایک پوائنٹ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بہت مشکل بنا ہوا ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کو دین کی تربیت کیسے دی جائے. اچھا، یہ تقریباً سب کا مین کنسرن ہے یہاں پر، یہاں پر بھی، یورپ میں بھی، جہاں کہیں بھی اپنے ملک سے باہر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر بھی سب کا مین کنسرن اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. البتہ اس سب کا مطلب وہ جو اس دین سے وابستہ لوگ، جو نعوذ باللہ پہلے ہی دین کو اتنی پرائیورٹی نہیں دے رہے، ان کے لیے یہ کنسرن نہیں ہے، وہ اس بات کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہے. لیکن جو لوگ پریشان ہیں ان کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ معاشرے بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. ہم سب کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور خاص کر آخری 40-45 سال میں جب سے پرسنل کمپیوٹرز انوالو ہوئے ہیں تو معاشروں کی جو تبدیلی کی رفتار تھی وہ بہت ہی زیادہ تیز ہے دوسری صدیوں کے مقابلے میں. اور اس کو آپ اس طریقے سے مقایسے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کمپیریزن میں کہ آپ آج سے 8,000 سال پہلے چلے جائیں تو جو لوگ ٹرانسپورٹ میں استعمال کر رہے تھے آج سے 150 سال پہلے بھی وہی کر رہے تھے. جو 8,000 سال پہلے کر رہے تھے وہی 150 سال پہلے کر رہے تھے. لیکن جو 150 سال پہلے کر رہے تھے اس میں اور آج کے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. تو جو فرق 7,500 سال میں نہیں آیا تھا وہ فرق صرف 100 سال میں آ گیا. اور 100 سال کے بھی جو آخری 30-35 سال 40 سال تھے اس میں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے والا. تو دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوئی ہے آخری چند سالوں کے اندر. اب اس میں ایک آفاقی قول ہے, مولا امیر المومنین کا درود بھیجے گا ان کی ذات کرام مولانا, فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کرنا جیسے تمہاری تربیت ہوئی ہے. تمہارے بچے تمہارے دور کے لیے خلق نہیں ہوئے, تمہارے بچے تمہارے دور کے لیے خلق نہیں ہوئے. میرے والد نے اگر میری تربیت کی ہو تو انہوں نے ایک طرح سے تربیت کی ہے. جس طرح میرے والد نے میری تربیت کی ہے اس طرح سے میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہوں؟ نہیں, وہ طریقہ آبسلیٹ ہے, وہ گزر چکا ہے مولا کے فرمان کی روشنی میں, وہ دوبارہ دہرایا نہیں جا سکے گا. کیوں؟ زمانے مختلف ہیں. اچھا یہ بات جب مولا نے ارشاد فرمائی تھی 1400 سال پہلے تو اس 100 سال میں مینز آف ٹرانسپورٹیشن میں کوئی چینج نہیں آیا تھا, ان کی دو جنریشن میں کوئی چینج نہیں تھا. ان کی جو دو جنریشن تین جنریشنز تھی اس میں ٹرانسپورٹیشن میں ٹیکنالوجی میں کمیونیکیشن میں کوئی چینج نہیں آیا تھا. یہ جو ہماری آخری 3-4 جنریشنز ہیں چینج کے اعتبار سے یہ ہیومن ہسٹری کی یونیک جنریشنز تھیں. اس میں جو تبدیلی تھی وہ ناقابل تصور تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرق. ناقابل تصور تبدیلی آئی ہے. اچھا اس ناقابل تصور تبدیلی کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو چاہیے تھا وہ یہ کہ ہم مولا کے فرمان کے اوپر بہت اچھی طرح سوچتے. وہ فرمان کیا تھا؟ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح نہیں کرنا جس طرح تمہاری تربیت ہوئی ہے. کیوں؟ میں نے عرض کیا وہ پرانے زمانے سے تھا. جبکہ امام کے 100 سال کے دور میں کوئی چینج نہیں آئی تب بھی امام کہہ رہے تھے وہ پرانا تھا. اور آج کے دور میں بہت پرانا ہے پھر وہ. بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر نے اس بات کو نہیں سمجھا, اکثر نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ کام ہونا کیسے. اچھا ہم میں سے اکثر لوگ انہی پیرامیٹر پر کام کرتے رہے, کم و بیش, تھوڑا زیادہ تھوڑا کم, جن پر ہماری تربیت ہوئی تھی اور وہ آبسلیٹ تھا, اس نے چلنا نہیں تھا. اچھا ایک ریئیکشن تو یہ آیا, ایک اور ریئیکشن آیا, اس نے کہا کہ بھائی وہ جو ہمارا طریقہ کار تھا وہ صحیح نہیں تھا, جس انوائرمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں اسی کو اپنا لیں. تو انہوں نے جو انگلش کا محاورہ تھا کہ وہی کرو جو رومنز کرتے ہیں, اگر تم روم میں رہ رہے ہو تو وہی کرو جو رومنز کرتے ہیں. تو انہوں نے اٹھا کے رومنز کو فالو کر لیا. اچھا اب رومن کی سڑکیں کہیں اور جا رہی تھیں, ہماری سڑکیں کہیں اور جا رہی تھیں, یہ مس میچ ہو گیا. اس طریقے پہ چلے وہ کچھ اور ہی ہو گیا, بچے وہ نہیں بن پائے. اچھا اب ہم سب کے سامنے یہ ایک مین کنسرن ہے, یہ کام ہوگا کیسے. اس بات کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی. وہ یہ کہ دین آپ کو کچھ اصول دیتا ہے, کچھ ضابطے دیتا ہے اور بہت بڑا ایک گرے ایریا دیتا ہے. اس گرے ایریا کو آپ نے اصول کے تحت فل کرنا ہوتا ہے, یہ آپ کا کام ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرد. خدا متعال دین کے اندر ہم سے کہتا ہے اولاد سے محبت کرو, محبت بھی کرو اور بچوں کا احترام بھی کرو. میں نے جب پہلی دفعہ یہ روایت پڑھی میں حیران رہ گیا, بچوں کا احترام کرو. وقروا اطفالکم, توقیر عربی میں احترام کو کہتے ہیں. وَقِّرُوا أَطْفَالَكُمْ، بچوں کا احترام کرو. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے بچے کا احترام کیسے کر سکتا ہے؟ بچے سے کہیں کہ والدین کا احترام کرے تو وہ ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، فائدے کی بھی ہے، لیکن ہم سے کوئی کہے کہ بچوں کا احترام کرو، اب یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہ گرے ایریا بن جائے گا، یہ وہ گرے ایریا ہوگا جس کے اندر آپ نے فل ان دا بلینکس اپنی طاقت سے کرنے. آپ احترام کیسے دیں گے؟ آپ کیسے احترام دے سکتے ہیں؟ یا مثال کے طور پر روایت نے کہا کہ اتنے سال کی عمر تک بچے کو بادشاہ بناؤ. اچھا بادشاہ بناؤ تو مطلب کیا کرو؟ اتنی عمر تک اس کو شہزادہ بنا دو، بعد میں ایڈوائزر بنا لو، کیا کرو؟ گرے ایریاز بن جاتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو فل کرنا ہوتا ہے. بہت سارے فارمولاز ایک زمانے میں صحیح ہوتے ہیں، دوسرے زمانے میں غلط ہوتے ہیں. میں دین سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے احتیاط کرنا اچھی بات ہے، دین میں احتیاط کرنا اچھی بات ہے، میں کہوں گا ہاں دین میں احتیاط کرنا اچھی بات ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان کسی کپڑے کو دھونا چاہتا ہے اور پانی جاری ہے، نلکے کا پانی ہے مثلا، اس کے نیچے ایک دفعہ اگر یوں نچوڑ دے کپڑا پاک ہو جائے گا، احتیاطاً دو دفعہ کر لے. آب قلیل سے دو دفعہ دھو لے پاک ہو جائے گا، احتیاطاً تین دفعہ کر لے. یہ احتیاط اچھی ہے، یہ احتیاط اچھی ہے. بس آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے میں تھوڑی تک اگر پانی آپ نے ڈال لیا تو کافی ہے، احتیاط کر لو، تھوڑا سا نیچے سے بھی کر لو. اتنے ہاتھ کی چوڑائی پر وضو ہو جاتا ہے، احتیاط کر لیں، تھوڑا سا یہاں سے بھی لے لیں. اب دیکھیے احتیاط اچھا ہو گیا، ہاں احتیاط اچھی چیز ہے. اب ایک کام کرتے ہیں صاحب، خواتین کے لیے حجاب واجب ہے، حجاب واجب ہے. اچھا چہرے پہ نقاب ڈالیں تو احتیاطاً کیسا ہے؟ اچھا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالنے احتیاطاً اچھی بات ہے. اچھا اگر اس احتیاط پر میں اپنی بچیوں سے بھی عمل کراؤں تو کیسا ہے؟ عمل کرواؤں؟ چلیے یہ مثال شاید کسی کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر رہی ہو، ایک اور پوچھ لیتا ہوں. واجب پہ عمل کرنا تو واجب ہے، مستحب پہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، تو میں بچوں سے نماز اول وقت کے مستحب پر جبرن عمل کروا لوں، جبر کر لوں ان پہ. مثلا میں اس کو نماز اول وقت پہ جبرن کہوں کہ تمہیں اول وقت پڑھنی ہے ہر صورت میں، یہ کر سکتا ہوں میں؟ دین کہتا ہے نہیں، مستحبات پہ سختی نہیں کرو، مستحبات کے اوپر گراؤنڈ دو انہیں. واجب پہ سختی کر سکتے ہو، مستحبات پہ گراؤنڈ دو. کیوں؟ احتیاطاً بہتر ہے، مستحب کروا تو دین ایک اور بات سے ڈرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر طبیعت میں نرمی نہیں آئی تو تمہاری سختی اس کو توڑ دے گی، تمہاری سختی اسے توڑ دے گی، مت کراؤ ایسی سختی جس سے لوگ دین سے ہی باہر چلے جائیں. تو شہید مطہری ایک جملہ استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے چہرے پہ ڈالنا احتیاط ہے لیکن دین کی مصلحت یہ کہہ رہی ہے کہ احتیاطاً آپ اس احتیاط پہ عمل نہیں کیجیے گا. دین کی مصلحت یہ کہہ رہی ہے کہ احتیاطاً آپ اس احتیاط پہ عمل نہیں کیجیے گا ورنہ دین ہاتھ سے نکل جائے گا، دین ہاتھ سے نکل جائے گا. بھائی کوئی ایسا دین مت دو بچوں کو کہ بچے دین سے ہی باہر چلے جائیں، لے کے چلنا ہے. تو یہ کچھ اصول ہیں، کچھ گرے ایریاز ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہے ہاں مولانا ہم نے تو ایسا کیا ہے کہ اب ہمارا بچہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے نا ہم روکتے ہی نہیں ہیں. اب یہ ایک اور ایکسٹریم ہے، ایک 180 ڈگری یہاں پر ہے، دوسرا 180 ڈگری یہاں پر ہے، بیچ میں کتنا حصہ ہے جس کو فل ہونا ہے. اچھا یہ فل کیسے ہونا ہے؟ مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی بات ہے، ہم یہاں پہ میں مختلف سینٹرز میں جا رہا ہوں، 6 مہینے پہلے بھی گیا تھا، 6 مہینے بعد اب آیا ہوں، دوبارہ جا رہا ہوں. تقریباً ہر جگہ پر ایسا ہے کہ ہم مجلس بول رہے ہیں یا میلاد پڑھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے جو جوان بچے ہیں وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں. اچھا ان کا حق بھی ہے، وہ آ کر ہم سے کہیں گے کہ مولانا آپ اردو میں بات کر رہے تھے، ہمیں اردو سمجھ میں ہی نہیں آتی. ہو سکتا ہے وہ کہیں گے. اچھا اس کو پہلے والے جو ہمارے دوست احباب تھے جو سینئر تھے وہ کہتے تھے بیٹا تم کو انڈین فلموں کی اردو سب سمجھ میں آ جاتی ہے، تم کو مولانا کی اردو سمجھ میں نہیں آتی سر. तो इस तरह की बातें होती थी कि भाई ठीक है, आप जब आपकी मर्जी आती है तो आपको उर्दू समझ में आती है, जब आपकी मर्जी नहीं होती तो आपको उर्दू समझ में नहीं आती। अभी अगर मिसाल के तौर पर नाऊज़ुबिल्लाह ताला सद नाऊज़ुबिल्लाह ताला बिला कयास बिला मुकायसा कोई एक्टर आता है तो उसकी उर्दू सबको समझ में आ जाती है, तो ये मौलाना जी उर्दू क्यों नहीं समझ में आती? मैं नहीं कह रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं, ग्राउंड दे देते हैं, ठीक कह रहा है। मैं भी अगर अपनी मादरी ज़बान में कोई चीज़ सुनता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। वो कहते हैं कि दो चीज़ें होती हैं पैरामीटर इस बात को सीखने के लिए कि आपने ये ज़बान सीखी या नहीं सीखी। पहली बात तो ये कि आप उस ज़बान में सोच सकते हैं, अगर आप किसी ज़बान में सोच सकते हैं इसका मतलब है आपने वो ज़बान सीख ली है। और दूसरा पैरामीटर होता है, वो मैं छोड़ देता हूँ, उससे मुशाबिक कह देता हूँ, अगर आप उस ज़बान में लड़ सकते हैं। वैसे वो दूसरा वाला होता है जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, तो अगर आप इसी ज़बान में लड़ सकते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको वो ज़बान आ गई है, क्योंकि लड़ने में बहुत तेज़ बोलना पड़ता है बगैर सोचे तकरीबन। तो वो ये दोनों बातें कह रही होती हैं कि हाँ अब आपको ज़बान आ गई, इन बच्चों को नहीं आती है, तो इनके लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों की जो लिमिट्स हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। अच्छा, अगर दो में से एक का ऑप्शन आता है तो हम किसको तरजीह देते हैं? अगर हमें दो में से एक को लेना पड़े, यानी या हमने इन बच्चों को खुश करना है या अपने आप को खुश करना है, तो हम किसको खुश करते हैं? अपने आप को। उसके बाद शिकवा क्यों कर रहे हैं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं? उसके बाद किस बात का शिकवा? ये वो ग्रे एरिया था जो आपने अपनी मर्जी से फिल करना था, अपनी मसलहतों को देखते हुए इसको आपने अरेंज करना था। अगर आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक बहुत मुश्किल आने वाली है। तो ये पहला पॉइंट था जो बच्चों की तरबियत के हवाले से था। इसके अलावा बहुत बड़ी जो तरबियत का अमल होता है वो आपकी बहुत अमानतदारी के साथ दीन के ऊपर पैरवी में होता है, बहुत अमानतदारी के साथ। उसका उसकी तशरीह में दो चार जुमले अर्ज करूंगा और ज़हमत आपकी तमाम करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अमानतदारी के साथ दीन पर अमल करना इसका मतलब क्या है? अमानतदारी के साथ दीन की पैरवी इसका मतलब क्या है? बहुत छोटी सी एक बात अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, अहम बात। दीन सिर्फ सफाई सुथराई है, यानी मतलब वजू रोज़ा नमाज है, या कुछ और भी है? कुछ और भी तो होगा यकीनन। अच्छा, दीन में नज़्म व ज़ब्त है क्या? होगा यकीनन, होगा नहीं, बहुत अहम है, बहुत अहम। कितना अहम है? इतना अहम है कि मौला ने जब अपनी वसीयत फरमाई तो फरमाया मैं तुम्हें दो चीज़ों की वसीयत करता हूँ, उसीकुम बितक़्वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अपने कामों को मुनज़्ज़म करो, अपने कामों को मुनज़्ज़म करो। अच्छा, ये अब इमाम ने तकवा के मुकाबले में नज़्म व ज़ब्त को रखा, नज़्म व ज़ब्त को रखा। कितनी इंपॉर्टेंस दूँ इसे? 50% की तो दे दूँ? नहीं, मैं 50% से थोड़ा कम कर लूँगा, क्योंकि इमाम ने अगर तकवा को पहले रखा है ना तो इसका मतलब है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 60% कम से कम डाल देता हूँ। ठीक है, दो सेंटेंस हैं लेकिन पहला जो आया है इसकी भी वैल्यू होगी, तो ये आगे रख दूँ 60% दे देता हूँ इसे, 40% इसको दे देता हूँ। सही है। अब मैं एक बात अपने आप से पूछता हूँ, हम दीन के अंदर काम करने में मुनज़्ज़म हैं क्या? तकरीबन सबको पता है कि नहीं है। देखिए, हम लोग दीन कैसे लूज करते हैं? हम बच्चों के सामने अपनी प्रैक्टिसेस से दीन की इम्पोर्टेंस को खोते हैं। मैं बहुत सादा सी आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूँ और अभी मैं मुकायसे में आपके नज़दीक साबित कर सकूँगा। फ़र्ज़ करें मेरे बच्चे मुझे जानते हैं कि हमारे बाबा मौलाना है, मिसाल के तौर पर वो हमें जानते हैं अच्छी तरीके से, और भी रोल हैं हमारे, इस रोल को भी जानते हैं। अच्छा, उनको ये पता है कि मिसाल हमारे वालिद जो हैं बिज़नेस भी करते हैं, ठीक है, उनको ये भी पता है। अच्छा, उनको ये पता है कि जब बिज़नेस में मीटिंग पे जाते हैं तो ये एक तैयारी करके जाते हैं, एक टाइम को देख के जाते हैं। अच्छा, अगर उसी तैयारी और उसी टाइम के साथ मैं मजलिस पढ़ने नहीं निकला तो मेरे बच्चों को क्या मैसेज मिलेगा? कि मेरे वालिद के नज़दीक बिज़नेस जितना इम्पोर्टेंट है मजलिस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों अपने अपने बिजनेस की मीटिंग के लिए निकलते हैं ना, तो ये एक प्रिपरेशन के साथ निकलते हैं और टाइम का ख्याल रखते हैं, ड्राइवर को अलर्ट करते हैं, इसको करते हैं, वो करते हैं कि भाई मेरी फलां टाइम पे मीटिंग है, गाड़ी तेज़ चलाओ। और जब मजलिस के लिए जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल मुतमईन होते हैं, देर हो सवेर हो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, अब बच्चा हमारे अंदर क्या देखता है, मुझे कि जब मेरा स्कूल लगता है ना और बाबा मुझे छोड़ने जाते हैं, तो इनको एक एक मिनट का ख्याल होता है। लेकिन जब ये मजलिस में जा रहे होते हैं तो खुद भी रिलैक्स्ड होते हैं और हम भी रिलैक्स्ड होते हैं। सही, तो वो इसकी इम्पोर्टेंस को जज करेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद फौरन हम जवाब में कहेंगे कि भाई मसला ये है कि स्कूल वाले स्कूल को वक्त पे शुरू कर लेते हैं, मजलिस वाले मजलिस को वक्त पे शुरू करते ही नहीं है। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेंबर जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी हैं उनके पास अथॉरिटी होती है, यहाँ कोई और दूर से आके नहीं करेगा, आप ही कर रहे हैं, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में तो फिर ये होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजर है, वो एक ही बंदा है, वन मैन शो कर रहा है, बाकी किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, ना वोटिंग है ना कोई कंट्रीब्यूशन है, कुछ है ही नहीं, वही करता है। यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो मिल मिला के करना होता है। इसका मतलब क्या है, मैं केयर नहीं कर रहा हूँ, मैं केयर नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मैं केयर नहीं कर रहा तो मेरे बच्चों को दीन मिलेगा? मैं अभी भी ये कहते वक्त उन बच्चों पे सोच रहा हूँ, इन बेचारों की क्या गलती है जो यहाँ बैठे हुए। और आप यकीन फरमाइए, मैं अपनी तानिस में अहम तरीन बातें कर रहा हूँ, वो अपने काम में मशगूल हैं सब, और मैं देख रहा हूँ ऊपर से, लेकिन मुझे पता है कि इनकी कोई गलती नहीं है। ये करें क्या, अरेंजमेंट सही नहीं है हमारा, और ये सिर्फ इस सेंटर की बात नहीं है, हर जगह यही है। उसके बाद लॉस की जो फीलिंग है वो पेरेंट्स में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, 30 30 40 40 साल के बाद हमसे आकर ये पूछ रहे हैं अब क्या होगा, अब तो जो होना था वो हो चुका है, अब जो होना था वो हो चुका है ना। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है, मिसाल के तौर पर अगर एक दिन मैं अपने बच्चे को देखता हूं ना कि वो कोई चीज टीवी पे गलत देख रहा है, मेरे दिल को धचका नहीं लगता। जब वो बाजार में मेरी इज्जत को उठा के आ चुका होता है तब मुझे धचका लगता है, उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होता है। ये हमारे साथ मुश्किल है भाई, अकलमंद बनो, पहले से सोच लो, अपने दीन को समझ लो। अच्छा, वो कहेंगे भाई हमें दीन का क्या पता, इसमें क्या क्या है, तो थोड़ा मेहनत कर लो, जब दीन के लिए इतना इतना जज्बात हैं तो दीन पर मेहनत कर लो कि भाई इसमें क्या क्या है, इसको कैसे करना होता है। देखिए ना, आप बाद में अगर आपको अफसोस करना पड़े अपनी ज़िंदगी में तो आप पहले से मेहनत करें ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दीन की गहराई हैं, और ये औलाद की तरबियत में दखालत देंगी, ये आपको और मुझे पहले दिन से सोचना पड़ेगा। और अगर हम इसको नहीं इंपॉर्टेंस देंगे तो भाई ब्रादर अजीज़, ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बनी है। जो आदमी पानी पिएगा उसको पानी का बॉडी में रिएक्शन मिलेगा, और जो जहर खाएगा उसको जहर का रिएक्शन मिलेगा। जहर खा के पानी का रिएक्शन नहीं मिल सकता है, और जो भी जो कुछ करेगा कॉज एंड इफेक्ट के तहत उसका रिजल्ट उसको लेना पड़ेगा, ये हम लोगों को उठाना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट था, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आप कहेंगे भैया ये एक ही इतना लंबा हो गया तो अभी बाकी पॉइंट में हमारा क्या होगा, नहीं मैं समेटूंगा इसको जल्दी जल्दी। तो अभी दूसरा पॉइंट क्या है, काम सही कहाँ से होता है, सही कैसे होता है, ये अभी इसके ऊपर हम जब शुरू करने से पहले बात कर रहे थे तो मैं इसको एक फॉर्मूले के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। काम को अगर सही करना हो तो कैसे होता है, अब मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो इस तरह से होता है कि मेरे बच्चे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के एतबार से थोड़े से बड़े हो गए, सबसे छोटे वाले भी 12 साल के हैं, तो अभी थोड़ा सा घर में सुकून आ गया है, चीज़ें अपनी जगह पर रह जाती हैं। ठीक है, जिस ज़माने में ये छोटे थे तो लगता था जैसे हर वक्त घर में 6 स्केल का बदला आ रहा है, हर वक्त चीज़ें इधर से उधर उधर से इधर। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको आप कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के कीड़े हैं, ये लोग आप कह सकते हैं किसी हद तक। तो अब मेरे लिए बड़ा हेडेक होता था कि भाई मैं घर में आया और वो घर जो है वो तूफान मचा हुआ है। तो जैसे ही मैं आता था, अब बच्चों को पता था कि ये जो आए हैं तशरीफ़ लाए हैं इनको ये पसंद नहीं आएगा, और मैं कभी अगर बगैर बताए आ जाता, बता के आता था, उनको पता होता था कि इतने बजे आएंगे तो थोड़ा सा ख्याल कर लेते थे बेचारे। तो उसमें भी ये होता था कि वो जब चीज़ें समेट के फारिग हो जाते थे और मैं आता था तो वो दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन की मुसीबत बची हुई, तो मैं यूं करके स्कैन करता था कमरे में, तो मुझे समझ में आ जाता था कि ये बला क्या निपटी है, तो अब यहाँ तक पहुँची है, समझ में आ जाता था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर जब मैं घर में आया और काम बहुत ख़राब हुआ हुआ है, तो मैं सादा सा एक काम करता था, किसी ज़माने में चीख भी पड़ता था, फिर मुझे समझ में आया चीखना बिल्कुल गलत काम है, इससे तो बहुत बुरा हो जाता है, बच्चों के मूड ख़राब हो जाते हैं। फिर मैं आता था, जो कुछ हाथ में रखता था उसको अपनी जगह पर रख कर कहता था मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, शुरू कैसे करते हैं? शुरू करने का एक सादा सा फार्मूला था, वो हमने घर में इन जलजलों से बचने के लिए पहले से बनाया हुआ था। वो क्या था? मैं अपने घर वालों से कहता था कि हर चीज़ की जगह पहले से तय कर लो, पहला काम ये करो हर चीज़ की जगह तय कर लो, एक बात। दूसरी बात, जब सही करने लगो तो हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना शुरू कर दो, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना शुरू कर दो। अच्छा, अगर आपने हर चीज़ की जगह तय नहीं की भी तो अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हर चीज़ की जगह तय की भी है तो अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करना मिनटों का काम है। जगह तो तय हुई भी है, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना शुरू कर दो। तीसरा फॉर्मूला, किसी भी चीज़ को अनअटेंडेड ना छोड़ो, जो भी चीज़ कहीं रखी हो किसी वजह से रखी हो। तीन पीस में आ गया बात। नंबर एक, हर चीज़ की एक जगह बनाओ, नंबर एक। नंबर दो, हर चीज़ को उसकी जगह पे रख दो, नंबर दो। नंबर तीन, किसी चीज़ को अनअटेंडेड ना छोड़ो। सही है, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ये जो लटका हुआ है ये अटेंडेड है या अनअटेंडेड है? ये अनअटेंडेड है। अब इस हॉल पे आप नज़र मार लीजिए, आप कितनी चीज़ें हैं जो अनअटेंडेड हैं और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी असल में जगह तय ही नहीं हुई भी। सही, आपको सही करना है ना तो इस तीन पैरामीटर पे सही कर लीजिएगा। नंबर एक, सबसे पहले हर चीज़ की जगह तय करें। नंबर दो, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखें। नंबर तीन, किसी भी चीज़ को अनअटेंडेड ना छोड़ें। अगर आपने ये सिंपल तीन पीस का फॉर्मूला उठा लिया तो ये समझ लीजिए कि वो दुनिया की कोई भी डिसऑर्डर हो उसको ऑर्डर में लाना मुश्किल नहीं है, आप ऑर्डर में ले आएंगे। और इसमें एक जो जंग होती है वो ये है कि डिसऑर्डर जीतेगा या ऑर्डर जीतेगा। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अजीब सी मिसाल है, शायद आप इसको यहाँ पे लिंक ना कर पा रहे हो, लेकिन मैं लिंक कर सकूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अजल फर। अब ये इशू इस सोसाइटी में निस्बतन कम है, लेकिन पहले एक ज़माने में था। एक ज़माने में इशू ये था कि वाइट्स अलहदा रहते थे, ब्लैक्स अलहदा रहते थे। तो अगर किसी इलाके में ब्लैक्स बढ़ना शुरू करते थे तो वाइट वहाँ से चले जाते थे, वाइट वहां से चले जाते थे। अच्छा, इस पे बड़े एनालिसिस हुए। अभी पिछले साल मैं जर्मनी में था, पिछले साल 1.5 साल पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो जर्मनी है इसके जो, मैं बर्लिन में था, तो उन्होंने कहा कि कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां सिर्फ इमिग्रेंट्स रहते हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां सिर्फ गोरे रहते हैं, और बहुत कम मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर मिक्स रहते हैं। तो मैंने कहा कि मिक्स जो होते हैं उसमें क्या ऐसा होता है कि 90% इमिग्रेंट्स में 10% गोरे रहते हैं? नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होता। तो मिक्स का मतलब क्या होता है? कहने के मिक्स का मतलब ये होता है कि 90% गोरों में 5% या 10% इमिग्रेंट्स होते हैं। अच्छा, उसमें एक स्टडी हुई थी 60s में, और तकरीबन 60s में, और उसने ये साबित किया था कि अगर 10% ऑफ पॉपुलेशन कलर की हो गई तो बाकी 80% भाग जाते हैं, बाकी 80% छोड़ के चले जाते हैं। 20% अगर कलर आबादी हो गई तो बाकी जो 80% हैं वो आबादी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब इस आबादी का डोमिनेंस जो है वो कलरफुल के हाथ में आ गई है। सही है, आप जैसे ही किसी डिसऑर्डर में आए सबसे पहले ये देखिएगा कि अगर एनवायरनमेंट की डोमिनेंस साबित करनी है तो पहले किस चीज़ को सही करना है, पहले किस चीज़ को सही करना है। हर कमरे के अंदर कोई एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो सही हों तो एनवायरनमेंट साबित हो जाता है कि ये वो है, हर जगह पर। ये रूल्स बने हुए हैं, साइंटिफिक रूल्स हैं। आपने यकीनन सुना होगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर 20% सिर्फ ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू 80% से ज़्यादा होती है। उस 20% को अगर आपने सही कर लिया तो 80% ऑफ मिस्टेक आपकी कवर हो जाएंगी। आपके एनवायरमेंट्स के अंदर जो डिसऑर्डर होता है उसमें भी ऐसे ही होता है। आप जाके देखिएगा वो 20% पीसेस कौन से हैं जिनको अगर मैं ऑर्डर में ले आया तो 80% ऑर्डर में आ जाएंगे। उन्हें पहले कर लें। एनवायरमेंट के ऊपर ऑर्डर की डोमिनेंस साबित हो जाएगी, बाकी छोटी पीसेज हैं उनको आप निपटा लीजिएगा। सबसे पहला काम ये करें एनवायरमेंट के ऊपर ऑर्डर की डोमिनेंस साबित हो। मसलन किसी माशरे के अंदर मुजरिम भी रहते हैं और शरीफ भी रहते हैं, ये मसला नहीं है, हर माशरे में ऐसा ही होता है। ये बताओ हुकूमत किसकी है, मुजरिम की है या शरीफ की है? अगर मुजरिम की हुकूमत है तो शरीफ भी जुर्म करेगा, और अगर शराफत की हुकूमत है तो मुजरिम भी जुर्म नहीं करेगा। आपको ये देखना होता है। इन उसूलों पे गौर फरमाइएगा तो आप डिसऑर्डर को ऑर्डर में, और बहुत आसानी से ऑर्डर को डिसऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, बहुत आसानी से छोटे छोटे काम करके। तो आप अपने अपने सेंटर्स में, अपने अपने घरों में, और ये तो मैंने ऐसे ही कहा था, अपनी अपनी ज़िंदगी में देखिएगा हमारी ज़िंदगियों का डिसऑर्डर कहाँ पर है। इसको अगर सही कर लिया, वो 20% जो मेन डोमिनेंस दे रहा होता है, तो आपकी ज़िंदगी का ऑर्डर कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। बहुत संजीदा हो गया, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शायद ही कोई मीलाद के लिए इन गुफ्तगुओं को, इस गुफ्तगु को सोच के आया होगा कि भाई मीलाद में ये सुनने को मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट, हम इंसानों की तबीयतें हिकमत को सुनने की प्यासी हैं। अगर हिकमतें नहीं मिलेंगी तो हमारी नेचर को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और बहुत सों को हो चुका है। क्यों? उन्हें हिकमतें नहीं मिली हैं। इस इन बातों की तशरीह अर्ज़ करता हूँ उर्दू में, ये तो खैर पता नहीं क्या था। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी मोहल्ले के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर, दोस्तों अहबाब के अंदर किसी बात पे लतीफ़ा सुनाकर उन्हें खुश कर लें। होता है, हम भी लतीफ़े सुना देते हैं कभी कभी, खुश कर लेते हैं। अच्छा, अगर लतीफ़े कितने परसेंट ऑफ गुफ्तगु हों तो इफ़ेक्टिव रहेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ जाएं तो गुफ्तगु ख़त्म, बेकार हो जाएगी। मसलन अगर गुफ्तगु में 20 मिनट की गुफ्तगु में आपने 2 मिनट में लतीफ़े सुनाए, चल जाएगा। अच्छा, अगर 20 मिनट की गुफ्तगु में आपने 5 मिनट लतीफ़े सुनाए, इफ़ेक्टिवनेस रहेगी लतीफ़े की या नहीं रहेगी? अच्छा, अगर 20 मिनट की गुफ्तगु में 10 मिनट लतीफ़े थे, फिर सही है। हम लोगों की तबीयतें इस बात पे बनी हैं मौला के फरमान की रोशनी में कि ये विजडम और हिकमत को रिसीव करें। डैट काम की बात, इसको रिसीव करने पे बनी हुई हैं। अच्छा, अगर हमें हिकमत मिलती रहे तो हमारी अक्ल तरक्की करती रहती है, हमारी अक्ल तरक्की करती रहती है। बिल्कुल ऐसी जैसे अगर किसी इंजन को प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन होती रहे तो इंजन प्रॉपरली चलता रहता है, जबकि उस इंजन का ल्यूब्रिकेशन का उस इंजन के फंक्शन में 10% रोल भी नहीं होता, लेकिन वो चलता अच्छा है। अच्छा, अगर वो हिकमत नहीं मिलती, बातें विजडम की बातें, फिलोसफिकल बातें नहीं मिलती तो क्या होता है? हम लोगों के दिमाग लतीफ़ों के आदि हो जाते हैं, लतीफ़ों के आदि हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर सीरियस डिसीशंस नहीं ले सकते। इन लोगों की जिंदगियां नॉन सीरियस हो जाती हैं। सीरियस डिस्कशन, सीरियस डिसीशन, ये इन डेप्थ कोई डिसीशन नहीं ले पाते। आज की सोसाइटीज का एक डायलेमा ये प्रॉब्लम है, तबीयतें लतीफ़ों पे बन गई हैं, तबीयतें मजाक के ऊपर बन गई हैं। देखिए, आप शुरू से बच्चे क्या देख रहे होते हैं? कार्टून देख रहे होते हैं। कार्टून में विजडम है? नहीं, कोई विजडम नहीं है। अच्छा, उसके बाद बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर मूवीज देखना शुरू कर देंगे, ड्रामास देखना शुरू कर देंगे। वो जो मूवी और ड्रामे बनाने वाले हैं उनको विजडम से कोई काम है? क्या काम? ये कोई फिलोसफिकल बुक पढ़ेंगे? ज़रा आप अमेरिका की स्टैटिस्टिक देखिएगा कि ये आबादी, इतने करोड़ की आबादी, ये फिलोसफिकल वर्क कितना पढ़ती है, आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ खूब किताबें बिकती हैं, फिलोसफिकल वर्क नहीं बिकता। हमारे कौम का एक बैच था फिलोसफी का, वो कनाडा भेजा गया कि कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में जो फिलोसफी पढ़ाया जा रहा है ज़रा उसको गो थ्रू करें। तो हमारे इंस्टीट्यूट का एक सीनियर बैच फिलोसफी का वो कनाडा गया, वहाँ पर कैनेडियन एक प्रोफेसर उसको लेक्चर दे रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ कौम में रिवाज ये था कि कोई कितना ही बड़ा उस्ताद क्यों ना हो, अगर टीचर के पास कोई ऑब्जेक्शन, स्टूडेंट के पास कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो नॉन स्टॉप बोल देगा। यानी वो एक मौके पे देखेगा कि उस्ताद ने कहीं सांस लेने के लिए ब्रेक मारा है, तो कहेगा सर इसका क्या होगा। वो वहाँ पे है ये कल्चर, हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, सवाल आज़ाद है वहाँ पर। तो वो बोल देगा बीच में कि भाई इसका क्या होगा। तो वो कैनेडियन फिलोसोफर था, वो क्लास ले रहा था, उसने बात की, वो हमारे भाइयों ने समझा कि भाई ये भी हमारा ही बंदा है। उन्होंने जनाब नॉन स्टॉप बगैर हाथ उठाए उन्होंने एक क्वेश्चन दाग दिया। अच्छा, वो जो प्रोफेसर था वो रुका, वो एकदम से झटका लगा उसको कि भाई ये क्या हो गया। तो उसने जवाब दिया। अच्छा, हमारे यहाँ मुश्किल एक और भी है, अगर टीचर ने जवाब दिया और स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो अपने आर्गुमेंट को काउंटर, उसके आर्गुमेंट को काउंटर भी कर सकता है, ये हमारे यहाँ लिबर्टी है। वो उठा, उसने काउंटर किया, तो जो आदमी सुपरवाइज़र क्लास का साथ आया था ना, उसने कहा बेटा हाथ जोड़ता हूँ चुप हो जाओ, ये नाराज़ होकर चला जाएगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी। आप यकीन फरमाइए, ये मुझे कई लोगों ने बताया, वो जो प्रोफेसर था उसने इस आदमी से कहा कि प्लीज़ बीच में मत बोलो। कहने लगा मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए किसी स्टूडेंट ने इतना इतना पैशन शो नहीं किया है। कहने लगा मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए पढ़ाते हुए, मेरे स्टूडेंट्स ने लर्निंग के ऊपर इतना पैशन आज तक शो नहीं किया था, इसको बोलने दो, मुझे खुशी हो रही है, यहाँ कौन सुनता है। तो फिर उसने बताया, कहने लगा बाज़ औक़ात मैं क्लास में फिलोसफिकल लेक्चर देने के दौरान में रोक कर कोई स्टोरी बोलना शुरू कर देता हूँ ये देखने के लिए कि स्टूडेंट कितना सुन रहे हैं। तो कहने लगा 30-35 की क्लास में एक दो लड़के सर उठा के यूं यूं देखते हैं, फिर वो नीचे मशगूल हो जाते हैं। ये इस सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, समझ रहे हैं आप, इसमें हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इसके नतीजे में क्या है, वो आपके अटेंशन डेफिसिट्स मुख्तलिफ किस्म के वो सब यहाँ पर रूल कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को सोचने का टाइम नहीं मिल के दे रहा। ये तीसरी बड़ी मुसीबत है जिससे आप गुजर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब इसका हल क्या किया जाए, तीसरी बात का छोटा सा एक हल ये है, अहले बैत की अहादीस की कोई एक किताब ले लें, नहजुल बलागा, कोई भी हदीस की किताब, रात को सोने से पहले 4 हदीसें पढ़ लिया करें, कोई तो वर्ड ऑफ विजडम मिले तो, सुनाने वाला नहीं, कम से कम पढ़ने वाला तो मिल जाए, कोई कहीं से कान में कोई बात तो पड़े जिसके ऊपर सोचें समझें कोई। बस देखो हम लोग तो अजीब मुश्किल है, हम ज़खीरों और ख़जानों पे बैठे हैं, कुरान करीम हाथ में लिए बैठे हैं, पता नहीं इसमें है क्या, अहले बैत की तालीमात हाथ में लिए बैठे हैं, पता नहीं इसमें है क्या। और मुझे बाज़ औक़ात इतना अफसोस होता है, एक ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ था, उसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों से बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आया करती थी। तो एक दिन मैंने देखा उस ऐप पर, जो इसको सेकुलर, बिल्कुल उसका कोई अरब मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं, उसके ऊपर उसने एक वो पिक्चर पोस्ट करता था, अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती थी, कोई सीनरी आ गई, कोई बात, कोई चीज़, कोई गलती, ये वो। एक दिन मैंने देखा उसने एक पिक्चर पोस्ट की हुई थी, एक साइन बोर्ड था, साइन बोर्ड टाइप का था, एक बोर्ड टाइप का था, उसके ऊपर अमीरुल मोमिनीन का फरमान लिखा हुआ था, वही फरमान जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, अपने बच्चों की तरबियत अपनी तरह नहीं करना, वो तुम्हारे बच्चे अगले ज़माने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी बातें समझ कर आगे पहुंचाने वाले कुछ समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। अब अच्छा, मैं तीसरी बात क्यों आपकी खिदमत में अर्ज़ की, आप बहुत सारी मजालिस में वर्ड्स ऑफ विजडम नहीं सुन पाएंगे, आप नहीं सुन पाएंगे, तो आपके जहन में ये बनना शुरू हो जाएगा कि शायद दीन में देने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो हमारे पास है वो शायद इनसे ज्यादा है। तो मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला होंगे अगर आप ये सोचेंगे। आपने जस्तजू नहीं की है, जरा घूमिए, थोड़ा फिरिए, थोड़ा ढूंढिए, यहाँ वर्ड ऑफ विजडम बहुत है, यहाँ भरा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप खुद इंसाफ से बताइएगा बिल्कुल। ये जो मैंने अभी आखिरी तकरीबन 45 मिनट में आपकी खिदमत में अर्ज किया, आपने जिंदगी में इस डेप्थ के साथ किसी मजलिस या कसीदे में आखिरी दफा कब इतना सुना था? और मैं तकरीबन गारंटी से कह रहा हूं कि आपने शायद पूरी जिंदगी के मजालिस में 5% भी इतनी डेप्थ में नहीं सुना होगा। मुश्किल यहां पर आई है, हमारी जस्तजू बहुत कम रह गई है। और अब मुझे एक बात समझ में, आखिरी बात और आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह पता है, समझ में आती है, वो ये है कि अगर दीन ने अपनी प्रोडक्टिविटी साबित नहीं की, दीन नहीं बच पाएगा। और दीन का मतलब दीनदारी है, दीन तो बच जाएगा, हमारी दीनदारी खतरे में है। हमें अपने दीन की प्रोडक्टिविटी साबित करनी होगी, प्रोडक्टिविटी साबित करनी होगी। देखो अब जरा सा बगैर आवाज़ निकाले उन तीन बच्चों को देखिएगा पीछे, प्लीज़ ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है? आप बिजी रहो, बिजी रहो, कोई मसला नहीं। इनकी को हमने इनको प्रोडक्टिविटी नहीं दी है, प्लीज़ बेटा डोंट माइंड इट, प्लीज़ गो थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम टेलिंग आवर सेल्फ, बिकॉज इट्स नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू, यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग इन उर्दू, आई डू रियलाइज इट, यस ओके थैंक यू, नो प्रॉब्लम, नो नो रियली रियली डोंट फील इट, प्लीज डोंट फील इट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर इनके लिए मेरी स्पीच में प्रोडक्टिविटी नहीं है, आई हैव नो राइट टू आस्क हिम टू लिसन टू मी, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्टिविटी फॉर देम। अगर मेरे दीन में प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्या ये दीन तरक्की करेगा? क्या ये दीन फैलेगा? क्या ये फैलेगा? नहीं, जितना है उतना रहेगा, नेवर। प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, हमारा दीन रिचुअलिस्टिक है या प्रोडक्टिव है? हम लोग रिचुअलिस्टिक हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर आपके दीन में प्रोडक्टिविटी नहीं आई, अच्छा प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? लोगों को दे क्या रहे हैं, लोगों को दे क्या रहे हैं? हम लोग एक थीम के ऊपर काम कर रहे हैं कई साल से, 25-30 साल से एक थीम पे काम कर रहे हैं। वो थीम क्या है? वो थीम ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां हमारे जैसे लोग कम हैं, हमें एक जगह बनानी है जहां हमारे जैसे लोग एक दूसरे से मिल सकें, दैट्स इट। हम लोग इस मेन थीम पे काम कर रहे हैं, हम दीन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सोशलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इसके नतीजे में हमें सोशलाइजेशन मिल रही है, दीन नहीं मिल रहा है। हमें दीन के लिए कुछ और करना पड़ेगा। और ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सालों का तजर्बा है मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में जाने का, सिवाय साउथ अमेरिका के मैंने कोई कॉन्टिनेंट नहीं छोड़ा है। मुझे पता है यहां पे क्या हो रहा है, इसकी बिना पे आपसे कह रहा हूं, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये वो है जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। अज़ीज़ान मुहतरम, ये अगर चेंज नहीं हुई, ये पैटर्न अच्छा नहीं है। इसने 25 साल पहले कुछ फायदे दिए हैं, लेकिन ये सोचो कि यही पैटर्न और यही थीम सारी जिंदगी फायदे देता रहेगा, नहीं, कंडीशंस चेंज हो गई, ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सारी सूरत हाल है, ये कतान कोई मिलाद नहीं था, बल्कि मजलिस से ज़्यादा शबी था। वजह के बजाय हमने लोगों के दिलों में मसरत डालने के, लोगों को और नस्बतन किसी हद तक एक परेशानी में और फिक्र में डाला। लेकिन ये आपका फ़िक्र में जाना बहुत ज़रूरी है, ये फ़िक्र में जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जितना भी जश्न होता है या जितना भी गम होता है, ये दीन की खातिर होता है। हमारे लिए दीन इम्पॉर्टेंट है, हम दीन को सोचना चाहते हैं। اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہاں پر کہ اگر کوئی مثال کے طور پر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے کسی آبادی میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں کی بلڈنگز کیسی ہیں، کوئی کار کا میکینک ہوتا ہے نا تو وہ کسی بھی آبادی میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے گاڑیاں کیسی ہیں، اگر کوئی دین کا طالب علم ہے تو وہ جا کر دیکھے گا کہ دین کیسا ہے، اس کی پرابلمز کو سوچے گا، تو آپ کے ساتھ یہ پرابلمز آئیں گی، ان کو آپ کو سوچنا پڑے گا، سولو کرنا پڑے گا۔ آخری بات اس سلسلے میں، آپ کہیں گے بھائی اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ کسی اور نے کرنا ہے، اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ رول آپ ہی کا ہی ہے، رول آپ ہی کا ہی ہے۔ آپ کو اس کو بعد میں ڈیفائن کروں گا، اتنا بہت ہو گیا، آپ کی صبر اور تحمل کی دعوت دوں گا کہ آپ نے سماعت فرمایا پورے صبر و تحمل کے ساتھ، لیکن یہ آپ کے لیے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے مفید واقع ہوگا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کی حضور دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اے خدا اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما، اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان ایام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرما، ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مراکز کو علم و تقویٰ کے مراکز میں قرار فرما، اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعزیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جان ساروں میں قرار فرما، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید ترقی کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔